ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सौभरी मुनि तपस्थली रामताल धाम की। तो ये धाम का प्रकट होना और अप्रकट होना और पुनः प्रकट होना, ये भी भगवान की एक लीला है। जब वज्रनाभ ने यहाँ पर पूरा धाम प्रस्थापित किया ना, सब विग्रह बनाए, सब वनों को संवारा, सब स्थानों को संवारा, नाम दिया, मतलब एक पूरा पिलग्रिमेज सेंटर बना दिया भगवान के आदेश के अनुसार, कि जहाँ जहाँ मैंने लीला किया है वहाँ वहाँ आप उसको बनाए रखना। लेकिन कहते हैं 150 साल में वो सब लुप्त हो गया भगवान की लीला के बाद। फिर 400 साल के बाद में जब भी हमारे संप्रदाय के गोस्वामी लोग आए तो पूरा जंगल ही जंगल था, कोई स्थान प्रकट था ही नहीं। आज कैसे रामताल बोर्ड लगा हुआ है, गरुड़ गोविंद का बोर्ड लगा हुआ है, मंदिर है, बकायदा कोई ऐसा जंगल में खोजने की जरूरत नहीं है, प्रस्थापित जगह हो गया ना वो, एस्टैब्लिश प्लेसेस, वैसे कुछ नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से दक्षिण ब्रज में जितने भी जगह थी वो उनके 6 गोस्वामियों ने पुनर्स्थापित किया। दक्षिण, दक्षिण मतलब यहाँ से उधर उस तरफ गोकुल, दाऊ जी जहाँ पर हम लोग गए थे उस सब उस जगह पर, यहाँ का जो हिस्सा है वो पूरा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनके अनुयायियों ने सब कुछ प्रस्थापित किया। और नारद मुनि के अवतार हुए, उनका नाम है नारायण भट्ट गोस्वामी, वो उधर उनका जन्म हुआ ऊँचे गाँव में, बरसाने के आगे एक ऊँचा गाँव है 2.5 किलोमीटर पे, वो उनका ललिता सखी का गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। वो नारद मुनि के अवतार थे, उन्होंने फिर सनातन गोस्वामी के शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी इनके प्रेरणा से आदेश के अनुसार उत्तर ब्रज जो है वो डेवलप किया, यानी कि बरसाना, ऊषा गांव, काम्यवन और वहाँ की जो एरियाज है ना, जैसे कोसी, वो सब उस तरफ है, उत्तर दिशा में दिल्ली की ओर है वो, राजस्थान में कई हिस्से उसके आते हैं, आदिबद्री, केदार, वो सब उन्होंने डेवलप किया। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया, स्थानों को निर्माण करना, विग्रहों को स्थापन करना, सरोवरों को जीर्णोद्धार करना, ये एक कार्य है। और दूसरा है सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन, यानी कल्चरल रेवोल्यूशन और कल्चरल रेनोवेशन। तो समय ये जो कल्चर था ना कि ब्रज की लीलाओं का नाटकीकरण, मतलब नाट्य प्रस्तुति, ये नहीं था उस समय। अभी आज जो हमें बचपन से पता है कि मैंने कभी बचपन में रामायण नहीं पढ़ा, कभी महाभारत नहीं पढ़ा, लेकिन बचपन से मुझे सब कुछ मालूम था, महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ, कैसे बताइए कैसे? क्या पुराने जन्म की साक्षात्कार था मेरे जन्म में? ऐसा नहीं था। हाँ, आज ही नहीं संगीतले आनी टीवी, अरे मैं जब बचपन में था तभी टीवी के एक घर में बिल्डिंग में एक ही टीवी हुआ करता था, नाटक, उसका रामलीला, यस सर, ये हमारे बचपन की खासियत है जो आप लोगों को पता नहीं मिलता है कि नहीं आजकल। हमारे बचपन में तो हर साल कई बार ये रामायण रामलीला चलती रहती थी, और कैसे शाम को शुरू होती 7 बजे, रात को 1 बजे तक चलती थी, और हम लोग 10-10 दिन लगातार देखते थे उसको, कभी प्रभा देवी में, कभी महाराष्ट्र हाई स्कूल में, कभी इधर, कभी उधर, कभी गिरिराज चौपाटी में, ऐसे भव्य रामलीला हुआ करती थी। तो उसको यहाँ पर रासलीला कहते हैं, रासलीला मतलब डांस नहीं होता है, रासलीला मतलब राम कृष्ण भगवान की लीलाओं का नाट्य सादरीकरण, नो स्टेज प्रेजेंटेशन। उसमें नृत्य भी होता है, उसमें डायलॉग भी होते हैं, उसके अंदर युद्ध भी होता है, उसको बहुत कुछ होता है शास्त्र के अनुसार। और बहुत सारी यहाँ पर मंडली है वृंदावन में, फेमस मंडली, फतेह कृष्ण मंडली, इतना सुंदर करते हैं वो, इतना सुंदर गीत गाते हैं, क्लासिकल उसमें डांस करते हैं और लीलाएँ, इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं राधा कृष्ण का, वो हम लोग मुंबई में कभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ का जो स्टाइल है राधा कृष्ण का श्रृंगार करने का नाटिका में, तो वो जो रासलीला संस्कृति है जिसको जिसके द्वारा बच्चे बच्चे भी कृष्ण की लीला को आसानी से समझ सकते हैं। कैसा ना, प्रवचन में बच्चे लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन नाटक होगा तो तुरंत बच्चे लोग दे विल बी वेरी हैप्पी, और उनको जो उसमें याद रहता है ना, वो बचपन से याद पूरे बुढ़ापे तक याद रहेगा कि क्या देखा था लीला में। तो इट्स लाइक ऑडियो विजुअल, लाइव ऑडियो विजुअल। टेलीविजन इज स्क्रीन लाइव ऑडियो विजुअल, बट ये लाइव स्टेज्ड परफॉर्मेंस। तो इसके माध्यम से ना हमको सारा मालूम था, रामायण में क्या, महाभारत में क्या, अभी उसका रहस्य बाद में मालूम पड़ा भक्ति में आने के पश्चात, लेकिन स्टोरी सबको मालूम थी। तो वो रास लीला का जो कल्चर था, वो जगह जगह उत्सव के अनुसार नाटिकाएं करना और उस स्थान का, उस उत्सव का महत्व लोगों को समझाना, ये काम का जो पूरा कल्चर है वो नारायण भट्ट गोस्वामी ने प्रस्थापित किया, और वो आज भी चल रहा है, लेकिन बहुत कम कम होते जा रहे हैं। मैं जब पहले पहले ब्रज में आया था 86 में, तो मैंने कई जगह बैठ बैठ कर लीलाओं देखा है, स्टेज के लीलाएं। पर हम लोग कैसे ना, हमारे मंदिर में हम लोग फेस्टिवल कर, ड्रामा फेस्टिवल करते हैं, एक घंटे का ड्रामा का हमको टाइम देते हैं, एक घंटे का, दो ड्रामा एक दिन में, दो ड्रामा दूसरे दिन में। तो एक घंटे के ड्रामा के लिए हम लोग तीन तीन महीने प्रैक्टिस करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली करना पड़ता है वो सब। और ये लोग यहाँ पर 7 बजे शुरू करते हैं और एक घंटे 1 बजे तक ड्रामा करते हैं, ऐसा फ्लुएंटली करते एकदम, एज इट नथिंग इज गोइंग ऑन, 6 आवर्स कंटिन्यूस फ्लो इज देयर, नो डायलॉग मिस्टेक, कुछ नहीं है सब, और एक दिन नहीं, लगातार चलता है वो, कभी कभी तीन तीन चार चार दिन चलता है। गौर लीला 7 दिन, सुबह गौर लीला, शाम को कृष्ण लीला, ऐसे उत्सव उधर गंभीरा में वृंदावन में होता है। तो ये जो अप्रकट होना, प्रकट होना, धाम जाना आना, ये भगवान की ही लीला है, और भगवान ही अपने भक्तों को सेवा देते हैं, उसके द्वारा धाम को पुनरुद्धार करते हैं। तो ऐसे कई स्थान है जो आज सूख गए और उधर प्लॉट बना के लोगों ने बेच दिए और वहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी है, कई स्थान है ऐसे। बहुत दुख होता है देख कर कि यार ये भगवान की लीला स्थली है, किसने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, एक दिन उसको प्लॉट करके बेच दिया गया, वो घर बनाया गया, इसके अंदर पता ही नहीं है। यहाँ पर चप्पा चप्पा लीला स्थली है, जहाँ जहाँ बिल्डिंग बनी तो वहाँ पर लीला स्थली है ना, लेकिन अभी तो बिल्डिंग बनी है वहाँ पर, किसी का आश्रम है वो। ऐसे कई स्थानों का जीर्णोद्धार, बेचे हुए प्लॉट दोबारा खरीद कर लोगों ने पैसे डालकर उसको वापस उसको मंदिर बनाया वहाँ पर। क्योंकि कैसा है ना, अभी हम लोग आ रहे हैं, आज भी हमारे मित्र हैं विनीत नारायण जी, बहुत बड़े भक्त हैं, ब्रजवासी पत्रकार भी हैं और बहुत सारे एक्टिव मेंबर हैं। उन्होंने इतना मेहनत करके, रिसर्च करके ये जगह ढूंढा और उसको इतने बड़े जगह को 25 फुट जमीन तक खोदा उसको, तब जाकर वो सौभरी मुनि का जो तपस्थली था वो प्रकट हो गया। अभी तो जल है उसके अंदर, हम लोग जब आए तभी ना पूरा खुदाई कर रहे थे, और खुदाई करते 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 ना एक समय ऐसा आया कि जेसीबी भी आगे का खुदाई नहीं कर सका, क्योंकि वो ओरिजिनल राम कुंड था ना, रामताल, उसकी बॉर्डर नीचे आ गई, प्रकट हो गई जमीन के नीचे। और उधर हमने दिखाया, उन्होंने दिखाया हमको कि जेसीबी कोशिश कर रहा है उसको भी खोजने का, लेकिन वो खोज नहीं पा रहा है उसको, और फिर पत्थर की बॉर्डर मिली उसकी, तब समझ में आया कि वो ओरिजिनल प्रकट हो गया है, तब उन्होंने खुदाई बंद कर दिया। तो आज अभी पानी के अंदर छुप गया वो, क्योंकि पानी हम लोग बहुत गहराई तक खोद दिया था उसको, फिर कुआं निकाला वहां से, वो जल भी निकला वहां से, क्योंकि ओरिजिनल था ना जो जमुना जी का प्रवाह था उधर। तो ये सब इस स्थान को प्रकट होते हुए मैंने खुद देखा, शुरुआत से लेकर बीच में उद्घाटन में भी मैं आया था। तो तात्पर्य कहने का ऐसा है कि कोई ना कोई भक्त जब भी प्रेरणा लेता है ना अपने आप पर कि भाई मुझे करना है, इस स्थान को प्रकट करना है, तो ये लुप्त हो जाएगा, इधर बिल्डिंग बनेगी, कॉलोनी बनेगी, और क्या क्या होगा इधर। लेकिन आज ये इतना सुंदर स्थान अगर पैदा हो गया है, तो हम लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हरियाली है, बैठो, आनंद से घूमो, यहाँ वहाँ भजन करो अकेले में आकर सुबह, और वातावरण का आनंद ले लो, नहीं तो गंदगी आएगी तो कैसे बैठेंगे यहाँ पर, अगर कीचड़ होगा, गटर होगा, सड़ा हुआ सामान होगा तो कैसे बैठेंगे आप। वैसा ही था, ये अनजान जगह थी, अभी रोड भी बन गया बहुत सुंदर, अभी हमारे इस्कॉन के तरफ से कितने सन्यासी कितनी यात्रा लेकर यहाँ पर आते, और कई सन्यासी ऐसे हैं कि रोज सवेरे यहाँ पर एकांत में आकर भजन करके चले जाते हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता है, शांति, खाली पक्षी मोर उड़ते रहते हैं, अब बैठो अपना शांति से भगवान का नाम लो, अनडिस्टर्ब्ड, अच्छा वातावरण है, अच्छी हवाएं, चल के वापस चले जाओ, 2 किलोमीटर का वॉकिंग है, 2 किलोमीटर का अब कमिंग गोइंग, 4-5 किलोमीटर वॉकिंग, जब भगवान के नाम का सुंदर चबूतरा है, यहाँ बैठो, उधर बैठो, कहीं बैठो, कुंड के पास बैठो, उधर के सीढ़ी में बैठो, कहीं भी बैठो। तो कोई व्यक्ति जब मेहनत करता है तो हजारों करोड़ों को उसका लाभ होता है आगे जाकर, दिव्य लाभ भी होता है, स्वास्थ्य का लाभ भी होता है, आंखों को भी आनंद आता है, हर जगह से आनंद होता है। तो हम लोग विनीत नारायण जी के ऋणी है बहुत इसके लिए, क्योंकि तो जंगल में उन्होंने ऐसा स्थान प्रकट कर दिया जो ओरिजिनली था वहां पर। ऐसा ही गोवर्धन की परिक्रमा में एक स्थान है संकर्षण कुंड, वो संकर्षण की मूर्ति भी वज्रनाभ ने बनाई थी, ओरिजिनल 4.5 फीट की मूर्ति है वो। लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ कि वो गटर पैदा हो गया उधर उस कुंड की जगह पर। आपको पता नहीं कि मेरे 86 के आगे जितने भी साल में यहाँ पर आ रहा हूँ उसके अंदर 20 साल तो वो गटर था। हम लोग कभी भी किसी को दिखाते नहीं थे क्योंकि इतनी बदबू आती थी वहाँ पर परिक्रमा करते समय कि हम लोग उसके बड़े आगे जाकर कहते थे कि पीछे संकर्षण कुंड रह गया, ऐसे बताते थे। क्योंकि इतना वहाँ पर गंदगी और कीचड़ और बदबू हुआ करती थी कि कैसे बताएं कि ये पवित्र स्थान है और ये दिव्य स्थान है, संकर्षण जी महाराज यहाँ प्रकट हुए हैं, ये सब कहना भी बेकार है, क्या है, हाउ कैन यू टेल स्टोरीज देयर। तो वो स्थान भी उन्होंने 20 साल हमने गटर का दर्शन करने के बाद में उन्होंने खुदाई किया उसका, और इस इतना ही सुंदर स्थान वहां बना दिया, पूरा कुंड बना दिया, सुंदर स्वच्छ जल डाल दिया उसके अंदर, 40 फीट की सुंदर संकर्षण भगवान की मूर्ति स्थापना की। उसके पहले अभिषेक में मैं गया था, पूरा क्रेन पे चढ़कर मैंने कई हंडे का अभिषेक किया था भगवान को। 40 फुट की मूर्ति सॉलिड, जिसके 15 फीट ग्राउंड के अंदर है, 24 फुट ग्राउंड के ऊपर है, सुंदर स्थान निर्माण किया। अभी हम लोग सब लोग वहां उतरते हैं, बिल्कुल अगत्य से वहां उतरते हैं, लोगों को बताते हैं, दर्शन कराते हैं, परिक्रमा करते हैं, कथा करते हैं। वहां पर एक सुंदर संकर्षण का विग्रह, जो उत्सव मूर्ति का एक मंदिर बनाया गया है, वहां पर उनकी सेवा होती रहती है। बड़ा मूर्ति कुंड के पास विराजमान है, पीछे गोवर्धन पर्वत है, पीछे गोपाल जी का श्रीनाथ जी का मंदिर है, बड़ा सुंदर दृश्य। उधर अभी कैसे खड़ा हो गया, किसी ने मेहनत किया इसलिए। ऐसे हमारे जो प्रवचन में आए थे ना फर्स्ट डे, रमेश बाबा जी महाराज, परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज, उन्होंने तो 500 जगह पर जीर्णोद्धार किया है, 500 जगह पर, हर एक जगह का 1-1 करोड़ रुपए खर्चा है। ऐसे 1-1 करोड़ एक एक स्थान पर जाकर बैठ गए। जीर्ण स्थान था, सबसे पहले हमने दर्शन किया गोमती कुंड का। वो गोमती कुंड यानी वो द्वारका जहाँ प्रकट हुई है ना ब्रज में, कोसी गाँव है वो, कोसी में द्वारका प्रकट हुई है। तो वहाँ पर गोपियों ने कहा था कि जब भगवान आए दंतवक्र को मारने के लिए, ब्रज में प्रवेश किया 112 साल के बाद, सब गोपियाँ उनको मिली, उनका मिलन हुआ विरह के अंतिम चरण में। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि द्वारका में आप हमारे आदमी रोते थे, तो उसकी एक नदी बनी हुई है आपके अश्रुओं की, गोमती नदी, हमको दर्शन करना है उसका। तो भगवान ने गोमती नदी को उधर प्रकट किया है गोमती कुंड के रूप में। उन्होंने कहा, तो गोपियों ने कहा कि हमने सुना आपका द्वारका तो समुद्र किनारे है, हमारे यहाँ तो समुद्र नहीं है, हमको दर्शन करना है समुद्र का। तो समुद्र को उन्होंने वहां प्रकट किया कोशी में, रत्नाकर कुंड के रूप में, और दोनों कुंड ऐसे जीर्ण अवस्था में थे। तो सबसे पहले उन्होंने गोमती कुंड रत्नाकर कुंड का जीर्णोद्धार किया। तो उनका स्टाइल क्या था, वो कीर्तन मंडली को बिठाते थे वहां पर और 24 घंटे कीर्तन करना है, एंड टाइम मालूम नहीं अपना कैसा है फेस्टिवल का, 3 दिन फिक्स टाइम होता है ना उसमें, 24/7 अनलिमिटेड टाइम, जब तक उसका कुंड का जीर्णोद्धार ना हो तब तक, कई महीने तक बैठते थे वो और दिन रात गाते थे टर्न बाय टर्न। और वो सब चमत्कार हमने आंखों से होते हुए देखा है, कीर्तन के प्रभाव से उस समय 35 लाख 40 लाख इकट्ठा हो गए और कुंड का जीर्णोद्धार हो गया, गोमती कुंड बन गया, सतनाकर कुंड बन गया, और हमारे गुरुदेव, हम साथ में गए थे उद्घाटन के लिए उसके जीर्णोद्धार होने के बाद में। फिर पावन सरोवर जीर्ण अवस्था में था, तो इस्कॉन के एक भक्त ने उसको पूरा नया बना दिया। फिर रत्न कुंड यहाँ पर पूरा टूटा फूटा पड़ा था, रत्न कुंड को बना दिया। ऐसे कई स्थान सुंदर बन गए। गया कुंड तो कीचड़ था पूरा, जिसका मैंने वर्णन किया कथा में आपको, शायद दो ग्रुप में किया, पूरा कीचड़ ही कीचड़। अरे क्या आचमन करें, क्या श्राद्ध करें, क्या उसमें पिंडदान करें, कैसे करें। आज उसको इतना विशाल भरा हुआ कुंड बना दिया है। ये जो अपनी गोविंद कुंड में गए थे हम लोग, आप वो कितने साल से सूखा पड़ा था, पहली बार मैंने आज पानी देखा उसके अंदर। प्रभु जी ने बताया कि पानी डालना शुरू कर दिया अभी। तो कोई कोई श्रद्धालु लोग हैं, वो अपना दिल और पैसा खर्च करके उधर कर रहे हैं कुछ। तो हम लोग इनके बहुत ऋणी है, क्योंकि हम लोग खाली घूमने आते हैं, हम लोग कुछ करते नहीं, लेकिन हमारे घूमने के लिए भी जगह चाहिए ना। ये तो हम लोग क्या कहेंगे, अरे प्रभुगण मातागण, यहाँ पर रामताल हुआ करता था, यहाँ पर अभी हरे कृष्णा कॉलोनी बनी हुई है, ऐसे बोलेंगे और क्या बोलेंगे। इधर यहाँ पर ऐसे होता था, इधर ये हुआ करता था, पिक्चर पुराना दिखा था वो, अभी तो नहीं है वैसे, ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना। अगर स्थान प्रकट होगा तो कथा कहने में कितना आनंद आएगा, आपको भी देखने में कितना आनंद आएगा, जो बोल रहे हैं वो आप देख रहे हैं, कितना अद्भुत आनंद आएगा। तो इस तरह से ये रामताल बहुत पुरानी और बहुत पौराणिक कथा है इसके अंदर। सौभरी मुनि नाम के मुनि हुए हैं, जो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश है पूरा, और ब्रज में आज भी सौभरी मुनि के वंशज ब्राह्मण निवास करते हैं, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश है वो। तो सौभरी मुनि इतने तपस्वी थे कि यहाँ पर है ना, ये पूरा जमुना किनारा है, ये भी जमुना पीछे पीछे हटकर कम कम होते होते आगे आगे चली गई है, बड़ा विस्तार था उसका पात्र, जो कम होते गया तो फिर जमीन पैदा हो गई, फिर जमीन पे फिर बिल्डिंग घर बनने लगे, ऐसे हो गया। तो ये पूरा जमुना जी का रेत है यहाँ पर, यहाँ बैठे हुए हैं। यमुना जी यहाँ बहती थी बहुत गहराई तक, वो यमुना जी के जल के अंदर तपस्या करते थे, मनुष्य होते हुए भी उधर रहते थे, बहुत अनोखा बल था उनके अंदर, योग बल। तो वो जल में मछलियां और सर्प रहा करते थे, बोलते ना वो समुद्र के सांप होते ना, नदी के सांप होते हैं वैसे जलचर सांप, तो वो गरुड़ जी उनको आकर पकड़ के खाते थे, उनका भक्ष है ना वो, खाते थे। कोई मुझे पूछ रहा था अभी कैसे झगड़ा हो गया उनका, बोले क्या करें, एक पक्षी है और एक सांप है, एक का खाना है दूसरा दूसरे का जीवन इसका भोजन है, क्या करें, वैर तो होगा ही, झगड़ा होगा ही आगे जाकर। तो वो ना सर्प वंश कम कम होने लगा, मछलियाँ कम होने लगी, तो सब लोग जाकर सर्पों को मिले, अरे कैसे करें। तो सर्प अपनी माता के पास गए, कद्रु के पास, कद्रु कश्यप की पत्नी है और उसकी बहन विनीता है जो गरुड़ की माता है। तो उन्होंने बोला, माता अभी हमारा वंश खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ पुत्र के पास जाओ हमारे, मतलब आपके ज्येष्ठ भ्राता के पास जाओ। वो कौन है बताइए? अनंत शेष, वो कद्रु के प्रथम पुत्र हैं, उसके बाद वासुकी, तक्षक, कालिया, उसके बाद बहुत बड़े 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 वृक्ष हैं, वासुकी वगैरह। और अनंत शेष सबसे बलवान है ना, भगवान बलराम जी के अवतार हैं। तो वो बलराम जी के पास, अनंत शेष के पास गए, उन्होंने कहा कि आप इतनी चिंता क्यों करते हो, आपके जल में ही बैठे हैं सौभरी मुनि, इतने पावरफुल व्यक्ति उधर ही बैठे हुए हैं, उनको जाके निवेदन करो। तो सब लोग यहाँ पर आए और सौभरी मुनि को उन्होंने निवेदन किया जल के अंदर कि हमारे जीवन को बचाओ, हमारे वंश को बचाओ। चलो कोई बात नहीं, बता दूँ, बचा दूंगा आपको, कोई चिंता मत करना। तो अगली बार उसके बाद में जब पहली बार गरुड़ जी आए कुछ खाने के लिए उधर, तो सौभरी मुनि ने उनको बताया चेतावनी के रूप में, डोंट कम हियर, यहाँ पर आपको नहीं आना है इसके आगे, और जब कभी आओगे तो मर जाओगे, तो शाप दे दिया उनको। अभी देखो गरुड़ जी कौन है पता है आपको? गरुड़ जी विष्णु तत्व हैं, स्वयं विष्णु जैसे ही है वो, क्योंकि विष्णु को धारण करने के लिए विष्णु के साथ अलावा कोई नहीं आ सकता है, विष्णु का आह्वान बनना है तो विष्णु तत्व ही आना पड़ेगा। तो इंद्र ने गरुड़ की बहुत सारी क्या कहते हैं उसको, प्रशंसा की है, स्तुति की है, गौरव किया है महाभारत में, बहुत लंबे चैप्टर्स हैं उनके स्तुति के। इंद्र ने समझ गए, अरे बाप रे, तो विष्णु के अवतार है, क्योंकि इंद्र ने उनके ऊपर वज्र फेंका था, अपना सबसे भयंकर अस्त्र भेजा था। तो गरुड़ ने कहा, तुम्हारा वज्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम इंद्र हो, मेरे भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हो, और तुम्हारा ये सर्वश्रेष्ठ अस्त्र भी भगवान ने तुमको दिया है उसको प्रभावित करने के लिए, तो मैं उसका मान रखने के लिए मेरा एक पंख देता हूँ आपको, मतलब आप वज्र फेंकेंगे तो एक पंख जल जाएगा आपका वज्र का सम्मान रखने के लिए, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। तो इंद्र को लगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा वज्र डालने से मृत्यु हो जाती किसी की। तो उसने जब फेंका तो देखा कि केवल एक पंख जला उसका। तब इंद्र शरण गए, चरणों में गिर गए उसके, और बहुत बड़ा गौरव किया उसका और हाथ मिलाया कि भाई तुम हमारे पक्ष में आ जाओ, क्यों हमको युद्ध युद्ध करना है। तो गरुड़ जी फिर इंद्र के मित्र बन गए। तो वो गरुड़ को बताया उन्होंने, अगर चाहते तो गरुड़ उनको शाप देते और भस्म कर देते थे उस समय, लेकिन गरुड़ वैष्णव भी है ना साथ में, उन्होंने कहा भी मुनि है, भगवान के भक्त है, तपस्वी है, उनका सम्मान रखना मेरा कर्तव्य है, ठीक है, और कहीं जलाशय में जाऊंगा, वहां पर खाऊंगा, भोजन करूंगा, यहाँ पर संत का आदर रखूंगा, उनका आशीर्वाद बोलो, उनका वरदान बोलो, उनका शाप बोलो, सर आंखों पर है मेरे। तो तुरंत चले गए। तो नम्रता का मतलब ये नहीं कि जब हम कमजोर होते हैं और असहाय होते हैं तो नम्र बन जाते हैं ना, नम्रता का सही अर्थ है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है फिर भी आप कुछ नहीं करते हैं। अगर हाथी को अगर चींटी ने चैलेंज किया, अगर हिम्मत है तो पंजा लड़ाओ मुझसे, और हाथी ने इसको इग्नोर कर दिया, मतलब हाथी बोलता है ठीक है चींटी है, अपना दिमाग खराब हो गया तो ठीक है, आई डोंट केयर बिकॉज मुझे अपना बल दिखाने जरूरत क्या है चींटी के सामने, तो वो ठीक है भाई तुम भी बलवानों में जा रहा हूँ, दैट इज नम्रता। पाँव रखेगा तो कितनी चींटियाँ मर जाएंगी, एक चींटी का दंड कहाँ दिखेगा उधर। तो उस तरह से वो बलवान होते हुए भी, रिस्पॉन्ड करने के लिए योग्य होते हुए भी, सौबरी मुनि को चितपट करने की शक्ति रखते हुए भी हाथ जोड़कर प्रणाम करके चले गए वो। लेकिन सौबरी मुनि ने भगवान के परम भक्त गरुड़ जी को ऐसा चेतावनी देने का प्रयास किया ना, तो उनको वैष्णव अपराध लग गया। गरुड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ा, गरुड़ चले गए। लेकिन वो अलग ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, वो सब हिसाब किताब करते रहते हैं कौन से खाते में डालना है, तो वो वैष्णव अपराध खाते में गया उनका। और आप देखिए क्या होता है जब वैष्णव अपराध करते हैं। हमको लगता है वैष्णव क्या है, कमजोर लोग होते हैं, हरी हरी करते रहते हैं, लहसुन भी खाते नहीं, कांदा भी नहीं खाते, नॉन वेज भी नहीं खाते, बहुत नाजुक घास फूस खा के कमजोर शरीर वाले लोग होते हैं। बट हमारे तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, मऊ मीणा होनी वैष्णव अमी कठिन वज्रा सही भेदू, ऐसे समय पर हम लोग बहुत कोमल मऊ रहते हैं, समय आएगा तो वज्र से भी भेद कर सकते हैं हम लोग। नाठाड़ा ची हाड़ी हाणु माथी काठा, क्या बोलते हैं इसको, नाठाड़ा छे माथी हाणु काठी, अगर समय आया तो रुकेंगे नहीं, ऐसे डरेंगे नहीं। तो वैष्णव खाते में गए, अपराध खाते में, तो जो व्यक्ति ने इतने साल तक तपस्या करके काम वेग, क्रोध वेग, हाँ निद्रा वेग सब पर नियंत्रण प्राप्त किया था उसने, साधु का क्या पर्पस क्या होता है तपस्या करने का, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का तपस्या का मेन उद्देश्य होता है, टू कंट्रोल अवर सेंसेस। तो वो उन्होंने यशस्वी तरीके से कितने साल से कर चुके थे वो, तो उन्होंने मछलियों को संबंध करते हुए देखा होगा ना, कई बार पानी में तो क्या मछलियाँ जीती रहती है, उनका संबंध होते रहता है, सर्प हर प्रकार के जीव संबंध करते रहते हैं वहाँ पर, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन ये घटना होने के पश्चात पहली बार जब नर मादी मछली उनके सामने आई संभोग करते करते, तो इनके मन में इतनी काम वासना जागृत हो गई कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए, सीधा जल के बाहर आ गए, बोले मुझे विवाह करना है, मुझे पत्नी चाहिए। इमेजिन वैष्णव अपराध का परिणाम क्या होता है, सबसे पहला परिणाम वैष्णव अपराध का, हमारे मन में जो दबी हुई काम वासना है वो पूर्णता से ज्वालामुखी की तरह जागृत हो जाती है। यू फॉल एक्चुअली बिकॉज ऑफ ओवरवेलमिंग सेक्स डिजायर इज अ रिजल्ट ऑफ वैष्णव अपराध। तो फिर वो परेशान हो गए, सोचने लगे क्या करूं अभी, पत्नी कहाँ से लाऊं, साधु बना हूं। तो उनको याद आया कि राजा मानधाता करके राजा थे एक बड़े पुराने, उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ा था, तो उन्होंने सौबरी मुनि को बुलाकर यज्ञ करवाया था और उनके राज्य में वर्षा हुई थी, तो ये उन पर उपकार था। तो बोला कि चलो उसी उपकार का फल लेते हैं अभी जाके, उसके राजकन्या की शादी कर लेते हैं। तो सीधे मानधाता के राज्य में पहुंच गए, उनको इतना काम वेग का आवेग था कि उनको भान नहीं था कि वो दिख कैसे रहे हैं, वे जल में जो बहुत दिन रहते हो क्या होता है, चमड़ी लटक रही है, दाढ़ी इतनी बड़ी, इतना कठोर चेहरा, हाँ वाइट वाइट बॉडी होता है ना पूरा फुला हुआ, लटकता हुआ चर्म है उसका, कितना ऐसा अद्भुत भयंकर उनका दर्शन था, लेकिन उनको भान नहीं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो गए राजा के पास, बोले मुझे विवाह करना है, आपकी कोई कन्या के साथ विवाह करा दो। तो राजा तो होश में थे, उन्होंने देखा कि बाप रे ऐसा अवतार के साथ कौन विवाह करेगा मेरी, कौन सी कन्या, उसको 50 कन्याएं थी, 50 डॉटर्स ही ऐड। तो अभी देखो मना करेंगे तो अपराध, तो शाप देंगे तो और प्रॉब्लम, तो डाले कैसे उसको। उन्होंने एक अच्छा रास्ता निकाला बीच का, उन्होंने कहा कि जो लड़की आपको पसंद करे ना वही आपकी, मतलब परस्पर सिलटा दिया मामला, लड़कियां देख ले अभी क्या करना है, पसंद करना है नहीं करना है उनके ऊपर डिपेंड है, मैंने तो हाँ कर दिया है। तो वो गए लड़कियों के पास, तो हर लड़की कह रही है अरे ये तो मेरा बहनों ही है समझ में आया, मतलब मेरा नहीं ये आपका पति है, ये आप लो। वो कह रहे थे आपका है आपका, ऐसे 50 लोग ने एक दूसरे पर डाल दिया उसको। तो राजा को मुनि को आश्चर्य हुआ, हर एक कन्या मुझे नकार रही है, दूसरे दूसरे को बोल रही है, क्या कारण क्या है। तब उसको होश आया, कह रहे मेरा शरीर इतना भयंकर दिख रहा है तपस्वी लोग का। तो उसने मंत्र बल से योग बल से ना एकदम सुंदर राजकुमार बने वो। जब राजकुमार बने तो सब लोग मेरा, अरे नहीं नहीं मैं। तो मुनि बोले डोंट वरी सब मेरे इतना वेग था उनके अंदर काम का वेग। तो बोले मैं किसी को नाराज नहीं करूंगा, आप सब मेरे सबसे विवाह करूंगा मैं। तो राजा भी बोले भाई अच्छा हो गया, अरे मैं इतना परेशान था, अभी क्या होगा इसका परिणाम, उसको श्राप मिलेगा आई डोंट नो, मुझे मिलेगा कि कन्याओं को मिलेगा, एक को मिलेगा कि बहुत लोगों को मिलेगा, आई डोंट नो। तो जब वो सब लौट देखे तो हैरान रह गए, अरे कैसे गए थे मुनि और कैसे लौट के आए, किस रूप में, एकदम प्रभावित हो गए देख के उसके सौंदर्य को, राजबिंडा राजकुमार था वो एकदम। तो राजा ने भी बोला अच्छा हो गया, इतना सुंदर भी मिला और मुनि भी मिला और सब तरह से बढ़िया है, तो 50 लोगों का विवाह कर दिया उसके साथ। सौबरी मुनि ने 50 रूप धारण किए और हरेक के गले में वरमाला डाली और 50 पत्नियों को लेकर वो वापस इस जगह पे आए जो उनकी खुद की तपस्थली है। अभी उधर आके उन्होंने 50 महल बनाए और वर्णन ऐसा दिया शास्त्र में कि ब्रह्मा के द्वारा निर्माण किए किसी भी तत्व का उपयोग न करते हुए खुद के योग बल से उन्होंने सृष्टि किया, यहाँ पर 50 महल अपने बल से बनाए और हरेक पत्नी के साथ में हरेक एक रूप के साथ में रहने लगे और इतना आनंद लिया उन्होंने, इतना गृहस्थी जीवन का आनंद लिया, 100-100 संतान पैदा किया एक एक कन्या के साथ, एक एक पत्नी के साथ। कितने हो गए अगर जग रहे हो तो बताना मल्टीप्लाई करके, कितना हो गया? गो बैक टू स्कूल। 50 पत्नियों को हरेक को 100 पुत्र हुए, 5000 पुत्र, 50 पत्नियां और एक पति, इतना देर तक उन्होंने आनंद लिया यहाँ पर, पता नहीं कितने वर्ष तक भोग लेते रहे। इतना समय तक भोग लेने के पश्चात उनको एक बार लगा है क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्या होता है ना, पहले होता है खुशी, बाद में बनता है झमेला। वो तो उसके लिए तो रूल अलग नहीं है ना, कोई भी प्रवेश करेगा तो उसको यही अनुभूति होगी, शुरू शुरू में आनंद आएगा, बाद में लगेगा बाप रे कितना कष्ट है इसके अंदर, कितनी जिम्मेदारी है, लगता तो बहुत अच्छा था लेकिन बाद में लगा कितना डिफिकल्ट है, और जो सोचकर मैं प्रवेश किया था वो दूर ही रह गया, अभी खाली ड्यूटी रह गया, अभी इसके बाद में मेहनत ही बच गई ऐसा लगता है बाद में। तो इनको बहुत देर के बाद में होश आया, तो सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो रिवाइंड करते 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 पीछे भए, तब उसको याद आया कि मैंने गरुड़ जी को ऐसा चेतावनी दिया था, सब कहानी वहाँ से शुरू हुई। तब तुरंत सब कुछ उन्होंने एकदम विरक्ति आ गई उनको, और उनकी विरक्ति देखकर पत्नियों को भी विरक्ति आ गई। तो जिस जगह पर तपस्या किया था, बाद में जिस जगह भोग लिया, उस जगह फिर विरक्त हो गए और फिर 50 पत्नियों के साथ तपस्या किया और फिर 50 पत्नियों के साथ वो सब गोलोक धाम चले गए, जीवन मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त किया उन्होंने। तो ये भोग और तपस्या, भोग और त्याग दोनों का स्थान है। सौबरी मुनि को भगवान ने उपयोग किया है एक पात्र के रूप में हमारे लिए, ये समझने के लिए। सौबरी मुनि भी अगर आप होंगे ना, कितने भी एडवांस्ड होंगे, लेकिन वैष्णव अपराध करोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि वैष्णव अपराध करने से किसी का क्या कहते हैं उसको, है गए के लिए जात नहीं। अगर वैष्णव अपराध कोई करता है और वो बहुत बड़ा संत है तो उसका पतन होगा ही होगा, क्योंकि भगवान को आपकी तपस्या आपके एडवांसमेंट में कोई लेना देना नहीं है, वो अपने भक्तों पर बड़ा प्रेम करते हैं, और कितने भी बड़े आप खुद बड़े होंगे और भक्तों का उनका अपराध करते हैं, दिल को ठेस पहुंचाते हैं, तो उसकी ठेस आपको पहुंचेगी पहुंचेगी। तो सौबरी मुनि जैसे महान ऋषि का पात्र बनाकर हम लोगों को उन्होंने शिक्षा दिया है कि बिवेयर ऑफ वैष्णव अपराध। जैसे कभी इतना सुंदर बगीचा बनाया है ना, कितना सुंदर मेहनत किया होगा, कितने महीने का मेहनत होगा, कितने साल का पैसा लगा होगा, कितना योजना बनाई होगी, कितना कष्ट किया होगा उसके लिए। तो आज आप रेडीमेड ऐसे गार्डन में बैठे हो, लेकिन समझो वो गेट पर एक हाथी को लाकर एक 1000 लीटर शराब पिलाई जाए हाथी को, और उसको नशा पूरा आ जाएगा तो उसको अंदर छोड़ा जाए, फिर क्या होगा, एक कुछ 2 घंटा में पूरा उध्वस्त कर देगा, पूरा पेड़ को उखाड़ देगा, पूरा ये सब इतना सुंदर कटिंग किया है सब कुछ जमीन दोस्त करके, पूरा ऐसा लगेगा तूफान आके चला गया। उसको कहते हैं मदांध हस्ती, यानी मद से जो अंध हो गया, नशे में चूर हो गया, ऐसा हाथी आएगा अंदर तो आपका बना बनाया सालों का मेहनत पूरा कचरा कर देगा वो। तो वैष्णव अपराध को मदांध हस्ती अपराध कहा गया है, क्या बहुत सालों से अपना दिल का भक्ति वाला बगीचा जो है ना वो सजाएंगे, इसको डेवलप करेंगे डेवलप करेंगे डेवलप करेंगे, और एक दिन वैष्णव अपराध वाला हाथी छोड़ देंगे अंदर उसके, तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो भी आपने भक्ति में अचीव किया है वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप खुद भक्त हो या नहीं हो, लेकिन अगर भक्त आपके संपर्क में है तो बच के रहना, उनके दिल को ठेस मत पहुंचाना, बी केयरफुल अबाउट इट। वो गलती करेंगे तो उनको बताने का एक तरीका होता है, ऐसा मत बताना कि उनका दिल दुखे उससे, ठेस लगे उनको दिल। जैसे माँ कैसे बच्चे को बताती है, प्रेम से बताती कि नहीं, बच्चा भी गलती करता है लेकिन प्रेम होने से हम बचाने का तरीका बदल जाता है। और दूसरे का बच्चा ने गलती किया तो कैसे बताते हम, अलग अलग तरीका होता है उसका। तो उस तरह से भक्तों के संपर्क में आप होंगे कहीं बाय चांस, या कहीं काम की जगह पर, या रहने वाली जगह पर, या कहीं भी और जगह पर रहेंगे होंगे, तो इस चीज़ से बचना, क्योंकि सब किए किराए पर पूरा पानी फिर जाएगा जितना भी आपने छोटा मोटा काम किया होगा। तो इससे ये सीख मिलती है हमको। उसके बाद में घटना हुई सबरी मुनि का, तो पूरा इतिहास यहाँ पर हो गया, जीवन वृत्तांत। उसके बाद ना एक बार कालिया और गरुड़ का युद्ध हुआ, बहुत भयंकर। तो गरुड़ का और कालिया का युद्ध हुआ, कालिया भी बहुत शक्तिशाली था, उसको 100 फन थे, गरुड़ तो गरुड़ जी हैं। वो युद्ध करते 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 वो उसको चितपट करते 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 यहाँ तक पहुँच गए। तो गरुड़ जी को याद आया, नहीं कालिया को याद आया कि इनको शाप है सौभरी मुनि का, तो तुरंत जमुना में जाके छुप गया। तो सौभरी ने हम गरुड़ ने देखा कि ये तो हमारे लिए प्रोहिबिटेड एरिया है, आई कैनॉट कम इन साइड, छोड़ के चले गए। उसीलिए कालिया यहाँ पर आके बस गया, और वो कालिया ने विष फैलाया और भयंकर सब जीवित हानि कर दिया, पूरा वेली वेली पत्ता पत्ता मर गया वहाँ का, पंछी भी उड़ते उड़ते मर जाते थे, ऐसे पूरा जीवन सृष्टि सब खत्म हो गया। वो भी इसी कारण यहाँ पर, उसको पता था ना, उन्होंने जाकर अप्लाई किया था ना पूरा संरक्षण के लिए। जब कल जब गरुड़ से हाथ से मरने का समय आया तो फिर जमुना में रक्षा प्राप्त किया उन्होंने, फिर भगवान आए, उन्होंने उनका उद्धार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे भक्ति संप्रदाय में ये जो विषय है ना वैष्णव अपराध, ये बहुत ही गहरा और बड़ा विषय है, क्योंकि अगर आपको इस मार्ग में कुछ हासिल करना है तो आपको पहले बताना होगा कि आप जो हासिल करेंगे वो क्या क्या चीज़ें उसको नष्ट करेंगे, पहले उससे आपको बचना चाहिए, फिर आपका बिल्डिंग बनेगा ना। आपको अगर हानि क्या होगी उसको पता है तो आपका बिल्डिंग धीरे धीरे बनेगा, उससे बचकर आप आगे बनाओगे। और अज्ञानी रहोगे तो फिर बनाओगे बिगाड़ोगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे वो समझ में नहीं आया उनको, 50 पत्नियों के द्वारा 5000 पुत्र पैदा करने के बाद में ध्यान में आया ये सब क्यों हुआ, लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं है, उनके पास था, हमारे पास है क्या समय इतना। अरे हमारे डॉक्टरों का लाइफ तो 55 ईयर्स हो गया एवरेज, कितने लोगों को पता है एवरेज लाइफ स्पैन इज 60 के आसपास हो गया अभी, और मेडिकल लोगों का उसके अंदर बहुत कम है, सबसे मिनिमम साइकेट्रिस्ट लोगों का है 50 ईयर्स ओनली, और बाकी लोगों का 55 के आसपास। हरी बोल। ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा पेशेंट पेशेंट देखते हैं, ज्यादा इमरजेंसी अटेंड करते हैं, उनका खुद का लाइफ कम 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 होते जाता है। इसलिए हम उनको बोलते हैं मॉर्निंग में वॉकिंग करो, थोड़ा सा लंबी सांस ले लो जाकर पेड़ के नीचे बैठकर, थोड़ा योगा वोगा करो, जरा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा हिमालय में चलो, कहीं बगीचे में चलो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ ताकि लाइफ थोड़ा बढ़े आपका, थोड़ा जीवन शक्ति आपके अंदर प्रवेश करे, है ना। तो वैसे ही जीवन काल कम कम होते जा रहा है, तो हमारे पास ना समय नहीं है कि वैष्णव अपराध करे, उसका परिणाम भुगते, फिर रियलाइज करे, अनुभूति करे, फिर वापस सुधरे, फिर वापस चालू करे, बीच में और कुछ गड़बड़ करे, फिर वैसा वो अग्नि जलाना पानी फेंकना, अग्नि जलाना पानी फेंकना, वैसे चलता रहेगा। और एंड रिजल्ट क्या है, नो अग्नि। मरने के समय नो अग्नि, डेथ के समय नो अचीवमेंट, नो स्टॉक, नथिंग। फिर दोबारा माँ के गर्भ में आना है, फिर जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर यही चलता रहेगा। अरे समय नहीं हमारे पास। और अगर भक्ति में बढ़ना है तो भगवान के नाम का जप करो। दो ही विधि है एक्चुअली मेन, अगर आपको निचोड़ चाहिए ना, निचोड़ सार क्या है बताओ। हमारा एक होता है ना टेक्सुबा गोल वाला मेडिसिन, उसके अंदर पॉइंट पॉइंट रहता है वाला, पूरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सिम्टम्स, 5 ट्रीटमेंट्स एंड 5 वैसा सब रहता है उसके अंदर। तो वैसा आपको चाहिए अगर एकदम संक्षेप में क्या करना है बताओ, तो दो ही चीज़ करना है, भगवान के नाम का जप करना है और वैष्णव अपराध नहीं करना है, बस टू थिंग्स ओनली। बाद में बाकी उसके कोरोलरीज और सब कुछ है उसके अंदर, आगे क्या करना है कैसे करना है, लेकिन सार में दो ही चीजें हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड डोंट ऑफेंड वैष्णवाज। इतना करेंगे ना तो आप वो फास्ट ट्रेन में रहेंगे, जेट प्लेन में रहेंगे, योर प्रोग्रेस विल बी लाइक जेट प्लेन। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर लीला है, ये जमुना किनारा है, जमुना किनारे में जो आते हैं वो जमुना का स्पर्श, जमुना का भूमि का स्पर्श करते ही उनके भाग्य खुल जाते हैं। हमारा हॉस्पिस बना है ना हमने भक्तिवृंदा हॉस्पिस, वो भी जमुना किनारे हैं, हमने जो खोदा ना उसके लिए बनाने के लिए, तो 25 फुट खोदा फिर भी रेती ही रेती लगी, वो ऐसी मुलायम रज रज वो था ना, बताया ना आपको मैंने, वो गौओं ने अपने खुरों से खोट खोट कर कांटे कंकड़ पत्थर को पीस पीस कर जो पाउडर बनाया था ना, वैसे रज थी उसकी, निकाल के रखी हमने बांध काम करने के पहले। इधर भी हमारा जो जगह लिया है उधर भी ऐसी रज है, पूरी पूरी एकदम मुलायम। आप गए थे ना उस दिन, कैसा मक्खन जैसा रज है वहां पर। ये सब जमुना जी का कृपा है, जहां जमुना जी बहती है वो सब उद्धार कर देती है, सब लीला स्थलियां उसके किनारे हैं, ये भी स्थान उसके किनारे पे हैं, और आगे जो हमारा पूरा वृंदावन जितना भी स्थान है सब जमुना किनारे हैं। यमुना जी ना वो काजल की तरह है, अगर वृंदावन आँख है तो यमुना जी काजल की रेख है, पूरे वृंदावन को घेरती है वो, ऐसे ऐसा उनका कविताओं ने वर्णन किया गया है। एनीवेज आप लोग इस सुंदर स्थान पे आए, आप लोग भी नीचे उतरिए, उस कुंड का दर्शन कीजिए, गोल घूम के आइए, थोड़ा सा आनंद लीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए। कहाँ मिलता है यह हवा, कहते बम्बई में रहने से, केवल रहने से कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, पाप को आप केवल रहने से ही 5 सिगरेट पीने का पुण्य मिलेगा आपको रोज जस्ट बाय स्टेइंग देयर, और प्राणायाम करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। ऐसा एक जोक आया था जोक बीच में कि वो उधर ना नरक में बहुत लोग मिले एक दूसरे को, तो नरक में बहुत लोग मिले एक दूसरे को मिले, बोले तू कैसे आया इधर, उसने कहा मैंने वो डकैती किया था तो इधर आ गया, दूसरे ने कहा था मैंने व्यभिचार किया था, व्यभिचार किसी औरत के साथ में मैंने संबंध किया, इधर आ गया। बहुत लोगों ने बहुत पापों का वर्णन किया, और एक व्यक्ति बोला मैं दिल्ली में था और मैंने केवल प्राणायाम किया बोला मैंने केवल दिल्ली में प्राणायाम किया तो इधर आके बैठ गया मैं तो उसी तरह से हमारा जीवन है, इसलिए थोड़ा बाहर निकलना, थोड़ा लंबा अच्छी हवा में। अभी कैसा है मॉर्निंग वॉक, एक जमाने में मॉर्निंग वॉक बहुत प्रेशियस था, इज इट नॉट ट्रू, जितना जल्दी उठोगे उतना शुद्ध हवा मिलेगी। अभी कहते हैं ठंड में मॉर्निंग वॉक नहीं करना है आपको, क्यों, क्योंकि सारा प्रदूषण ठंड में नीचे आता है, और आप ठंड में अगर मॉर्निंग वॉक जाओगे आईसीयू में भर्ती हो जाओगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो कहते हैं कि सूरज ऊपर आएगा ना तो सूरज आपको पोल्यूशन को थोड़ा ऊपर लेके जाएगा, आपके सर के ऊपर लेके जाएगा, फिर आप चलना हो सर में सब नॉर्म्स चेंज हो जाते कलयुग में, एवरीथिंग इज टॉपसी टर्वी। आपको सोचते हो शास्त्र में पढ़कर और करने जाओगे तो उसको विपरीत परिणाम मिलेगा उसका, तो ऐसा भयंकर युग में हम लोग जी रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, रहना ही पाप है यहाँ पर, जस्ट टू कंटिन्यू स्टेइंग ऑल्सो इज पाप। इसलिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं, पदम पदम यत विपदम नतेषाम, शास्त्र में लिखा है कि कलयुग में रहना ही पाप है। अरे सांस लेंगे तो बैक्टीरिया मरते हैं, चरेंगे तो जमीन पे जंतु मरते हैं, पानी गर्म करके पियेंगे तो जंतु मर जाते हैं, खाना पकाएंगे तो जंतु मर जाते हैं, सब जगह पाप ही पाप है। ऊपर से हम लोग नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा मांसाहार करते हैं, क्या क्या हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ हम लोग करते हैं, तो पूरा भंडार ही है पाप का ये। तो कुछ कुछ तो हम लोग छोड़ देते हैं कि ये नहीं खाएंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जो अनायास ही होते रहे तो उसका क्या करेंगे, उसके लिए भगवान के नाम का जप करते हैं। जो हमारे बस में है व्यभिचार छोड़ दिया है, मांसाहार छोड़ दिया है, लहसुन प्याज चाय कॉफ़ी नशा छोड़ दिया है, जुआ छोड़ दिया है, झूठ बोलने का प्रयास करते नहीं झूठ बोलना है, चोरी नहीं करते हैं किसी का, उसको फंसाते नहीं है, वो सब ग्रॉस ग्रॉस जो है ना वो विश्वासघात किसी का नहीं करना है, ये 7 जघन्य पापों में से विश्वासघात एक भयंकर पाप है, किसी का विश्वासघात करना 7 पापों में से एक पाप है, तो हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन बाकी जो दिन दहाड़े होते हैं ना पाप हमारे, वो कैसे हम लोग तारें, तो हम लोग उसको भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उससे हमारा जीवन शुद्ध हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच।